दस अंग इतिहास संकलन की शुद्ध परंपरा। ऐतिहासिक परंपराओं के विकास में जिस प्रकार भृगुवांगिरत संप्रदाय का योगदान रहा, उसी प्रकार सूतों की संस्था का भी योगदान रहा। सूतों की धारा भी प्राचीन काल से प्रचलित रहे। सूत शब्द का उल्लेख यजुर्वेद, यथर्ववेद, अथर्ववेद संहिताओं, तैत्तरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, राजसूय, काठक संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों, तैत्तरीय ब्राह्मण एवं शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। ऋग्वेद सूतों को गीत के साथ संबंध करता है, गीताय सूतानि नृत्याय शैलुषानि, जबकि ब्राह्मण सूतया हंतवाय घोषित करता है। पूर्व में सूत मागध से संबंधित प्रतीत है। ये सभी तथ्य संकेतित करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में सूत का अर्थ एक मंत्री अथवा चारर था। सूत शब्द की उत्पत्ति विवादास्पद है। विद्वान ने सु अभिषवे तथा सु प्रसवैश्वर्य यो या गतहु से स्वीकार करते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा राजसूय यज्ञ के समय सूत के घर जाता था और वरुण के लिए जल का भोज्य पदार्थ निर्मित करता था, क्योंकि सूत देवों की शक्ति थी। शतपथ ब्राह्मण काठक संहिता में इंद्र द्वारा वृत्त वध का जो विवरण दिया गया है, उससे यह ज्ञात होता है कि युद्ध में जो विजय करता है वह सूत और ब्राह्मण के गायत्री के जाप से होता है। इस उद्धरण से निष्कर्ष निकलता है कि सूत तथा ब्राह्मणी गायत्री तथा अन्य श्लोकों मंत्रों का पाठ करते थे, तथा यह अनुमान किया जाता है कि उनके पाठ से राजा को शक्ति प्राप्त होती है, जिसे प्रेरित होकर राजा ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। प्रारंभिक काल में यह कार्य ऋषियों द्वारा संवाहित किया जाता था। ऋग्वेद के एक मंत्र की व्याख्या से बृहद देवता एक कथा प्रस्तुत करता है कि वायु भारद्वाज ने प्रस्तोक्त श्रृंजय तथा अभ्यावर्ती चायमान को मंत्रों से पवित्र किया, जिसका परिणाम हुआ कि उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए। काटक संहिता इस प्रकार यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि राजाओं को मंत्रों से शक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया ऋषियों से होकर उनकी शाखा के ही एक वर्ग सूतों द्वारा संपन्न की जाने लगी। ऋषियों तथा पृष्ठ संख्या 168। सूतों की निकट संबद्धता का संकेत बाद की परंपरा में भी प्रवाहमान रही। बौधायन सूत में सूत तथा शौती नामक गोत्र का उल्लेख अंगिरस वर्ग के भारद्वाजों तथा कश्यपों के अंतर्गत किया है। आपस्तंभ ने भी सूत गोत्र का उल्लेख केवलांगिरस समूह के अंतर्गत किया है। इसी परंपरा में वायु पुराण में सूत को ब्राह्मण सम्माननीय ऋषि तथा वैदिक मंत्रों का ज्ञाता कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में सूत एक महत्वपूर्ण सभाधिकारियों के रूप में मान्य था। वह अष्टावीरों का एक प्रमुख था। एक रत्नी के रूप में सूत का प्रभाव राज्य पर महत्वपूर्ण था। राजा को तलवार भेंट के समारोह में राज्य परिवार के सदस्यों तथा ऋषि पुरोहित के पश्चात उसका स्थान होना एक संकेत करता है कि सूत का राज्य सभा में महत्व मान्य था। ग्रामीणी की भांति सूत भी एक कार्यकारी पद प्रतीत होता है, जाति का संकेत नहीं होता। यजुर्वेद सूतों को गीत के साथ संबद्ध करता है। इससे व्याख्या की जा सकती है कि राज्य गीत के कारण सूतों और राजाओं का निकट संबंध था। ऋग्वेद में इस प्रकार के गीतों को गाथा कहा जाता है, जो महाभारत में उल्लिखित अनुवंशा के समान वंशावली गीत रहे होंगे। इतिहास पुराण की परंपरा में सूतों और राजाओं का निकट का संबंध था। ऋग्वेद में इस प्रकार के गीतों को गाथा कहा गया है, जो महाभारत में उल्लिखित अनुवंशा के समान वंशावली गीत रहे होंगे। इतिहास पुराण की परंपरा में सूतों को यह श्रेय है कि उन्होंने राजाओं तथा ऋषि पुरोहितों की वंशावली की रचना एवं संरक्षण का कार्य किया। सूत जो कि राजकीय अधिकारी थे, अधिकांशतः भृगुवांगिरत भिगवागिरस परिवारों से प्रसूत थे। इन्हीं लोगों ने विभिन्न राजवंशों की वंश परंपरा, वंशावली तथा राजवलियों की रचना की। कालांतर में इन्हीं वंशानुचरित तथा सर्ग प्रतिसर्ग आदि को संयुक्त कर पुराणों का पंच लक्षणात्मक रूप निर्धारित किया गया। सूतों तथा इतिहास रचना की यह परंपरा एक वर्ग विशेष रूप में विकसित हुई। महाभारत तथा पुराण में सूत प्रवक्ता के रूप में चित्रित किए गए, जिनके पास जाकर ऋषियों ने पौराणिक विषयों की जिज्ञासा की और जिन्होंने उनके प्रश्नों का समाधान संतोषजनक रूप में दिया। परंतु पुराणों में सूत की समस्या उलझी हुई दिखाई देती है। यहाँ सूतों की दो परंपरा प्रतीत होती है। एक प्रतिलोमज जाति की परंपरा, जिसका उल्लेख मनुस्मृति के आधार पर सूत क्षत्रिय पिता से ब्राह्मणी में प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति था, जिसका निर्देश गौतम धर्म सूत्र में मिलता है। सूत शब्द का प्रयोग रथ हाँकने वाले के लिए भी होता था। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय का मत है कि इतिहास पुराण के श्रोतागण भारतीय समाज के निम्न स्तर के प्राणी होते थे और उसके वक्ता भी उसी सामाजिक स्तर से संबद्ध होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सूत की परंपरा का विवरण महाभारत एवं पुराणों में प्राप्त है। आश्वलायन के कथनानुसार भारत महाभारत के रचयिता भारताचार्य व्यास थे। व्यास शिष्य लोम हर्षण ब्राह्मण थे। डॉक्टर पाठक के अनुसार व्यास भृगवांगिरस परिवार के ब्राह्मण थे। उनके इस नाम का कारण यह था कि अपने पौराणिक प्रवचनों के द्वारा वे श्रोताओं को आनंदित किया करते थे, जिससे उनके रोंगटे लोम रोम खड़े हो जाते थे। इस नाम की एक दूसरी व्याख्या है कि व्यास जी के पौराणिक प्रवचनों को श्रवण कर उनके लोम हर्षित हो गए थे। पुराणों में इनकी उत्पत्ति की विचित्र कथा प्रक्षिप्त प्रतीत होती है, क्योंकि सूत दिव्य लोक का जीव माना गया है। सूत लोमहर्षण के पुत्र भी इतिहास पुराण के महान व्याख्याता थे। उनका नाम था श्रौति उग्रश्रवा और इन्होंने ही महाराज जन्मेजय को हरिवंश महाभारत का परिशिष्ट सुनाया था। सौती शब्द की व्याकरण लभ्य व्युत्पत्ति है। सुतस्यापत्यम सोती द्रौणीवत, अर्थात जिस प्रकार द्रोण के पुत्र द्रौणी कहलाते हैं, उसी प्रकार सूत के पुत्र सौती हुए। यह धातव्य है कि अपत्य प्रत्यय का योग ही सूचित करता है कि सूत किसी जाति का नाम नहीं है, बल्कि विशिष्ट पदाधिकारी का नाम है। जैसा डॉक्टर पाठक का विचार है कि सूत ब्राह्मण थे, राजा से संबद्ध थे और वंशानुचरित की रचना करते थे, वही परंपरा पुराणों में अधिक विकसित रूप में दिखाई देती है। भागवत पुराण का कथन है कि सूत ब्राह्मण से श्रेष्ठ था। यही कारण था कि सूत के मार डालने से बलराम जी को ब्रह्म हत्या लगी, जिसके निवारण के लिए उन्होंने भारत के समग्र तीर्थों की यात्रा संपन्न की थी। महाभारत एवं पुराणों के अवलोकन से यह तथ्य ज्ञात होता है कि लोम हर्षण को व्यास जी ने इतिहास पुराण का अध्ययन कराया था और इनके प्रवचन और प्रचार का दायित्व इन्हीं को दिया था। वे ज्ञानी एवं महाविद्वान ब्राह्मण थे। पौराणिक ब्राह्मण ही होता है। इस विषय में अग्नि पुराण का कथन है कि प्रिषदाच्यात समुत्पन्नः सूतः पौराणिको द्विजः वक्ता वेदादि शास्त्राणं त्रिकालानल धर्मवित। इससे स्पष्ट है कि सूत विद्वान पौराणिक ब्राह्मण होते थे, जिनके द्वारा इतिहास पुराण की परंपरा सुरक्षित रखी जाती थी। कालांतर में सूतों की स्थिति में परिवर्तन हो गया। वंशानुचरित की रचना का जो कार्य सूत करते थे, पूर्व मध्य काल में राजदरबारियों के एक वर्ग विशेष द्वारा होने लगा। भृगवांगिरसो तथा भ्रमणशील इतिहास संग्रहक सूतों का स्थान वेतन भोगी राजकवियों तथा संधि विग्रहों ने ले लिया। परंतु सूतों की यह परंपरा एक वर्ग विशेष राजदरबारी कवियों, भाटों के वंशजों, के वंशकारों ने एक व्यावसायिक जाति रूप में परिवर्तित कर लिया, जिनका अस्तित्व स्वतंत्रता के पूर्व के भारतीय दरबारों में था, जो संबंधित राजाओं की वंशावली का गान करते थे और परंपरा से प्राप्त वंशावली को सुरक्षित रखे हुए थे। सूतों की परंपरा में ही गोत्र प्रवरकार ब्राह्मण भी थे। पंडित भगवत दत्त का मत था कि गोत्र प्रवरकार संसार के महत्तम ऐतिहासिक थे। उन्होंने ऋषि वंशों का अनुपम इतिहास सुरक्षित रखा है। उनके रचनाओं का अवशिष्ट श्रौत सूत्रों यत्र तत्र पुराणों और परिशिष्ट आदि ग्रंथों में संप्राप्त है। डॉक्टर विश्वंभर शरण पाठक के निर्देश में डॉक्टर गौरीशंकर तिवारी ने गोत्र प्रवर पर उत्तम कार्य किया है। भारतीय लोक जीवन में अद्यावधि विभिन्न संस्कारों यज्ञ याग के अवसरों पर गोत्र प्रवर का उच्चारण विद्वान वंशविद ब्राह्मण संकल्प मंत्रों के साथ करते हैं, जिसमें व्यक्ति और वंश के संबंधित पूर्वजों की नामावली और वंशावली होती है।